आज के प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। 1969 जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उसी वर्ष आपको यह ईश्वरीय ज्ञान मिला। आप स्कूल की पढ़ाई पढ़ रहे थे उस समय। फिर 1972 में मैट्रिक बोर्ड की एग्जाम मेरिट से पास करने के बाद आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं, इसलिए आरंभ में सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद आदि आदि स्थानों पर रहकर आपने सेवाएं की और उसके बाद लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन इंचार्ज के रूप में अपनी अमूल्य सेवाएं दी। और फिर 1993 में जब ज्ञान सरोवर अकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, बाबा ने आपको वहां बिठाया। वहां करीब 17 वर्षों तक रहकर आपने वहां का रिसेप्शन, अकोमोडेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आदि आदि बहुत सुचारू रूप से चलाया। फिर 2010-11 के आसपास नीचे शांतिवन में सेवाओं का बेहद विस्तार होता गया, बाबा ने आपको वहां बिठाया। तो वर्तमान में शांतिवन में स्थायी रूप से रहते हुए आप हेडक्वार्टर के सभी परिसरों में जो प्रोग्राम्स चलते हैं सब में अपनी सेवाएं देते हैं। आप मुख्य रूप से राजयोग प्रशिक्षिका हैं, भट्टी की प्रशिक्षिका हैं, SML ट्रेनर हैं और साथ ही साथ बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। और इसलिए पूरे भारत भर में तो क्या विदेश में भी आप भ्रमण करते रहते हैं, कहीं राजयोग शिविर कराते हैं, कहीं भट्टियां कराते हैं और कहीं SML के प्रोग्राम, तो कहीं बिजनेस एंड इंडस्ट्री के कार्यक्रम कराते रहते हैं। नीचे जो कुमारियों की ट्रेनिंग चलती है वो भी आप संभालते हैं। इसके साथ साथ अपने युवा काल में 1985 में आपने युवा पदयात्रा को भी लीड किया और अपनी लीडरशिप क्वालिटी का प्रमाण दिया। 1996 में भी बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की तरफ से आयोजित कार रैली में भी आपने पार्टिसिपेट किया है और साथ साथ मुरलियों का बहुत गहन चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। आज जो हमारी भट्टी का थीम है, महसूसता द्वारा संपूर्णता, और उसी के अंतर्गत हम कितने समर्पण हैं बाबा के प्रति, ये महसूस करना है हमें। तो कैसे समर्पण मयता से संपूर्णता और संपन्नता को हम हासिल कर सकते हैं, इस पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। मधुबन की पावन भूमि, वरदानी भूमि, तपोभूमि में तपस्या करने में आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सबको? क्योंकि स्वयं बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने, आदि रत्नों ने, आदि सेवा रत्नों ने इस भूमि पर तपस्या की है। यहाँ नेचुरल बाबा की याद रहती, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये बहुत अच्छा मौका आपको मिला है। हमारी टीचर्स बहनें भी काफी दिखाई दे रही हैं। अच्छा, यहाँ है? ओहो, अच्छा। तो सभी गोल्डन चांस का अनुभव कर रहे हैं। अपने मन बुद्धि पर अपना ही अटेंशन हो, ताकि जिस स्थान पर बैठे हैं उसका आनंद हम ले सकें। कई बार ऐसा होता है ना कि जहां हम शरीर से होते हैं वहां मन नहीं होता है। ट्रेन में ट्रैवलिंग करेंगे तो घर की बातें याद करेंगे कि अरे घर में ये कहना भूल गए, ये रखना भूल गए, ये बताना भूल गए, घर की बातों को याद करेंगे। और घर जाएंगे फिर ट्रैवलिंग की याद करें। तो खुद का खुद पर अटेंशन हो कि मधुबन आने के लिए तो हर कोई तरसते है ना कि भाई हमें भी मौका मिले, हमें भी मौका मिले। तो देखो इतनी लगभग 100 जितनी बहने समर्पित बहने हैं और 100 जितने भाई बहने। तो जब ये गोल्डन चांस मिला है तो देखो मन और बुद्धि इसका आनंद ले रहे हैं। इस भूमि की जो विशेषता है, इसके कण कण में बाबा की यादें समाई हुई है। तो हम यहां सहज योगी, निरंतर योगी, स्वतः योगी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है समर्पण मयता से संपन्नता और संपूर्णता। अब पहले तो हर कोई अपने आप से पूछो, हम संपन्न और संपूर्ण बनना चाहते हैं? पूछो अपने आप से कि आधा अधूरे में ही मजा है, हाँ? जो भी थोड़ा बहुत हम बन गए हैं बाबा के सत्य ज्ञान और योग की शक्ति से, थोड़ा बहुत तो हम बन गए हैं, पवित्र बने हैं, योगी बने हैं, सत्य ज्ञानी बने हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं। इसमें ही मजा है, क्या जरूरत है संपन्न बनने की, ऐसे तो नहीं सोचते, हाँ? पूछो हरेक अपने आप, पहले खुद अपने आप को कन्विंस करो कि मुझे बनना है। जब बाबा मिले हैं, सत्य ज्ञान मिला है और इस राह के राही बन रहे हैं, तो मुझे संपूर्ण बनना ही है। कोई कार्य आप शुरू करते हैं, उसको आधा अधूरा छोड़े तो अच्छा लगेगा, लोग एप्रिशिएट करेंगे, नहीं करेंगे? उसको अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और अपने लक्ष्य को सिद्ध करेंगे, तभी तो महिमा योग्य बनेंगे। आधे में छोड़ दो तो हमारी महिमा थोड़ी होगी। तो जब हम सभी ने सत्य को परख लिया है, बाबा को परख लिया है और हम इस मार्ग के राही बने हैं, तो हमारा दृढ़ लक्ष्य हो कि हमें ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। थोड़ा बहुत बनकर, थोड़ी बहुत प्राप्ति करके खुश होने की बात नहीं। जो हमारे 100 भाई बहने आए हैं घर में रहने वाले, वे क्या सोच रहे? संपन्न और संपूर्ण बनना है, क्या विचार है सबका, बताओ, हाँ? ऐसे तो नहीं समझते कि हम तो घर में रहते हैं, हाँ? हमारे पर तो बहुत जिम्मेवारियां हैं, सांसारिक कितनी बातें हैं। हाँ, ये ठीक है, जो समर्पित हुए हैं वो बने, हाँ? हम कैसे बन सकते हैं, ऐसा विचार तो नहीं आता है? बताओ भाई बहने, ऐसा विचार आता है? नहीं, ऐसा विचार नहीं करना है, हाँ? क्योंकि बाबा ने हर आत्मा को संपूर्ण बनने का अधिकार दिया है। ये बाबा की कितनी बड़ी हम सबके लिए कृपा है। भक्ति में तो कितना भेदभाव रखा जाता है, ये शास्त्र बहने नहीं पढ़ सकती है, इस मंदिर में बहने नहीं जा सकती है, ये पूजा बहने नहीं कर सकती, धर्म भक्ति में भी ये भेदभाव रखे जाते, फलानी जाति वाले जा सकते हैं, ये जाति वाले नहीं जा सकते। गृहस्थी ये नहीं कर सकते, सन्यासी कर सकते। कितने भेदभाव है ना। पर यहां बाबा ने हम सब आत्माओं के लिए कहा है कि सब आत्मा को संपूर्ण बनने का हक है। कोई लिंग भेद नहीं, जाति भेद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, हर आत्मा बन सकती है। और इसलिए जो नियम मर्यादाएं समर्पित पालन करते हैं, वही नियम मर्यादाएं घर में रहने वाले भाई बहने भी पालन कर रहे हैं। वहां तो सन्यासियों के नियम अलग है, गृहस्थी के अलग है। वहां तो गृहस्थी के स्वमान को ही तोड़ दिया गया ना, कि आप गृहस्थी है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप संसारी है। बहुत जन्मों के तप हो तो सन्यासी बन सकते, ऐसे वो कहते हैं। आप तो हमारी चरण में आओ, शरण में आओ, हम आपको पार करेंगे। पर यहां बाबा ने हरेक को खुद खुद का गुरु बना दिया कि आप ही अपने जीवन के गुरु हैं और आप ही अपने जीवन की नैया को अपने सत्कर्म से पार करें। कोई किसी की नैया को पार नहीं कर सकता है। हमें अपने कर्मों की शुद्धि से अपने जीवन की नैया को पार करना है। तो देखो आज हम सभी बाबा के बच्चे उस पुरुषार्थ में लग गए, किसी के आधार पर नहीं। भाई वो साधना करें और उनकी सिद्धि से मैं मुक्त हो जाऊं, नहीं। हरेक को खुद अपने जीवन को पार करना है और योग बल से खुद के विकर्मों के हिसाब किताब को चुक्त करना है। तो ये अपने आप को रोज पक्का कराना है, हम गृहस्थी नहीं है, ट्रस्टी हैं। हम बेहद के सन्यासी हैं, हम बेहद के वैरागी हैं, हम राज ऋषि, ये टाइटल हमें याद रखना है। बाकी खुद की अवेयरनेस नहीं है तो समर्पित होके भी गृहस्थी बन जाएंगे और खुद में जागृति है तो गृहस्थी होते भी समर्पित स्थिति में आ जाएंगे। सारी बात खुद की अवेयरनेस जागृति की है और हमें पता है ये ही समय है संगम युग का, कल्याणकारी वरदानी समय है। जब भगवान आते हैं और संपूर्ण बनने का संपूर्ण सत्य ज्ञान देते, साकार मुरलियों के माध्यम से बाबा ने ब्राह्मण जीवन, जिसको दूसरे शब्दों में कहे सच्चा मानव जीवन का ज्ञान दिया। दुनिया में कहते हैं ना आज इंसान इंसान नहीं रहा, क्योंकि इंसानियत नहीं है, शरीर से मानव है परंतु मानवता नहीं है। तो सच्चा इंसान कैसा हो सकता है, वो बाबा के पवित्र ब्राह्मण बच्चे बताते। ये ब्राह्मण जीवन के नियम मर्यादाओं का हम पालन कर रहे हैं। और सच्चे मानव से संपूर्ण मानव बनने का पूरा ज्ञान बाबा ने अपनी अव्यक्त मुरलियों में दिया है। लगभग 50 वर्ष अव्यक्त बाप दादा का पाठ चला। प्रति वर्ष 10-12 अव्यक्त मुरलियां चलती थी। इस प्रकार संपूर्ण बनने का पूरा मार्गदर्शन ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण स्थिति से हमें दिया। वो मुरलियों का खजाना सबके लिए उपलब्ध है, सबके लिए है ना। किताबों के रूप में भी है, ऑनलाइन भी पूरा खजाना मिलता है। हम लोग शुरू में रोज की मुरली भी हमें व्यक्तिगत नहीं मिलती, ये तो टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ अब आने वाले भाई बहनों को सब कुछ उपलब्ध है, मोबाइल। तो मार्गदर्शन मिल चुका है, हरेक ने अव्यक्त वाणियों का अच्छी तरह से अध्ययन किया होगा, नित्य करते होंगे। संपूर्ण बनने का पूरा मार्गदर्शन हमें मिल गया। अब हमें दृढ़ लक्ष्य बनाना है कि संगम का समय है, बाबा आए हैं, आप समान हमें बना रहे हैं, तो मुझे बनना ही है, मुझे बनना ही है। खुद के लक्ष्य को पक्का रोज करो। बाबा कहते हैं ना, मेरे सामने बैठते हो तो लक्ष्य को याद करो, पक्का करो, रोज रिवाइज करो। हम ये ज्ञान योग क्यों कर रहे, हमने ये सफेद वस्त्र क्यों पहने हैं, हमने ये बैज क्यों लगाया है, खुद खुद को अटेंशन दिला। अपनी मर्जी अनुसार पुरुषार्थ करने के लिए नहीं। कई बार हम अपनी मर्जी अनुसार पुरुषार्थ करना है, करना होगा तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, कोई थोड़ा बहुत करेंगे। यहां मेरी मर्जी की बात नहीं है, अपनी मन मर्जी से जिए, उसका रिजल्ट तो देख लिया ना। कलयुग के अंत में पहुंच गए, पूरे तमो प्रधान बन गए। अब मुझे श्रीमत अनुसार जैसा बाबा चाहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करना। तो ये है मन और बुद्धि का समर्पण कि अब मैं बाबा के आगे समर्पित। चाहे घर में रहकर श्रीमत पर चलते हैं, चाहे सेंटर में रहकर श्रीमत पर चलते हैं, चाहे हम मधुबन में रहकर श्रीमत पर चलते हैं। कहीं भी रहे, जो श्रीमत पर चल रहा है वो समर्पित है। तो अपनी मन और बुद्धि समर्पित की है? पूछो। जो बाबा श्रीमत दे वो सत्य है, वो कल्याणकारी है और वो करना संभव है। तभी तो बाबा कह रहे हैं, अगर हम कर न सके तो ऐसी बात बाबा क्यों बताएंगे। पता है ना, साकार में भी बाबा का ये स्वमान रहता। एक बार ना कह दिया फिर बाबा उसको नहीं कहते थे। जो कर सके उनको बाबा कहते थे। बाबा ये विचार करते थे कि भगवान कहे और बच्चा ना कर दे, माने नहीं तो और ही बोझ चढ़ेगा ना। इसलिए जो कर सकते उनको ही बाबा कहते। तो ये तीनों निश्चय हैं, बाबा जो श्रीमत नियम मर्यादाएं सिखाते हैं वो सत्य है। उसमें हम आत्माओं का कल्याण है और हम कर सकते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं। कई बार भाई बहने सोचते हैं ना कि बाबा को क्या पता गृहस्थी में कितनी बातें आती है। बाबा गृहस्थी बने तो पता चले, कई ऐसे सोचते, परंतु नहीं। बाबा को पता है हमारी सिचुएशन क्या है, हमारे किस हिसाब किताबों में हम हैं। बाबा जानते हैं कलयुग अंत पर पहुंचे हैं, थकी हुई आत्माएं हैं, तमोप्रधान बनी हुई आत्माएं हैं। बाबा को पता है ना सब कुछ, मुरली से ही पता चलता है ना कि बाबा सब कुछ जानते हैं। फिर भी कहते हैं मीन्स हम कर सकते हैं, तभी तो कहते हैं। तो हमारा अपना मन बुद्धि से बाबा से अपोजिशन नहीं होना चाहिए। ये पहली समर्पण रहता है। हमारी बुद्धि बाबा की कोई भी बात का विरोध ना करे। बाबा की हर बात को हम दिल से स्वीकार करें। अपने आप को ऐसा बनाओ, अगर हम नहीं हैं तो अपने आप को बनाए। कई बार हम समर्पण हो जाते हैं, पर संस्कार हमारे समर्पण जीवन के अनुकूल नहीं होते। पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों से और इस जन्म में भी ज्ञान से पहले अज्ञान काल में किए हुए कर्मों से बने हुए गलत संस्कार, पुराने कलियुगी संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। ज्ञान हमने स्वीकार कर लिया, पर हमारे संस्कार गलत है, तो इच्छाएं भी गलत उत्पन्न होगी, मन में संकल्पों के तूफान भी गलत उठेंगे। परंतु परख लो, अब तो सत्य ज्ञान मिल गया ना, परख शक्ति अब आ गई ना, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, परख सकते हैं कि द्विधा में रहते हैं। इतना क्लियर ज्ञान बाबा ने दिया है, इतना स्पष्ट ज्ञान बाबा दे दिया है, सत असत की परख हमें है। इसलिए गलत संस्कारों को तपस्या करके मिटा देने, है कोई न कोई कड़े संस्कार कलियुगी अभी भी हैं। बाबा कहते हैं ना, मोटे मोटे विकार तो छोड़ दिए, ज्ञान में आते ही वो तो हम सभी ने छोड़ दिया। देखो, कर्म में हम सभी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे, कर्म में काम विकार पर विजय पाली, पवित्रता की धारणा करते हैं। अब हम पुरुषार्थी हैं कि मनसा में भी, बाबा कहते हैं ना, संकल्प में, स्वप्न में भी काम वासना ना हो। इतनी हम शुद्धि कर रहे, जब कर्म में पवित्रता धारण कर ली तो मन में गंदगी क्यों रखनी है, मन में विकारी विचार क्यों चले। खुद खुद को सिखाओ, समझाओ, दूसरा कोई कब तक हमें देखता रहेगा, कोई कब तक हमें रोकेगा, टोकेगा, सुधारेगा। और अब समय ऐसा है, किसी को वो सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। पहले दादियां हमारे पर अधिकार रखती थी, हमें कुछ भी कह सकती थी, आज तो कुछ कह नहीं सकते, सहनशीलता ही नहीं है। जब बड़ों से नहीं सुनना समझना है तो खुद खुद के जवाबदार बनो। बन सकते हैं, बनो, हमें खुद खुद का रेस्पॉन्सिबल बनो। कि अब इतना बड़ा बेहद का परिवार है और हमारे काफी बड़े तो एडवांस में चले गए, अब व्यक्तिगत कौन कितना ध्यान दे सकेगा। मुझे खुद खुद का रेस्पॉन्सिबल बनना है। हर ब्राह्मण बच्चे पर क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, पता है ना, सबको पता है हम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जिम्मेवारी है? मुरली में आता है ना, मुरली में आता है, हर रोज कोई ना कोई पॉइंट आते हैं। हमारी जिम्मेवारी है इस यज्ञ को जो बाबा ने रचा विश्व कल्याण के लिए, हमें इस यज्ञ को संभालना है। बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मण चाहिए, तो हम खुद खुद के जवाबदार बने कि इस यज्ञ में मुझे कैसे चलना है। जितना ऊंचा सत्य ज्ञान है, जितना ऊंचा हमारा बाबा है, जितना ऊंचा हमारा यज्ञ है, आज पूरे विश्व में ब्रह्मा कुमारी का नाम रोशन है ना। कहीं भी जाते हैं, मैंने तो विदेश में भी अनुभव किया, वहां भी हमें पहचानने वाले मिल जाते हैं, अज्ञानी भी। हम अमेरिका का वीजा लेने गए तो लोगों ने बोला, इस ड्रेस में जाएंगे आपको नहीं मिलेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हम अपने देश में ही बैठे हैं, नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। और जब गए लेने वीजा इंटरव्यू में, हमारा ड्रेस देख के ही वो अंग्रेज ऑफिसर कहता है, ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू राजयोग, वीजा दे दिया। ये है बाबा का प्रभाव। आज देश विदेश में दुनिया पहचान गई है कि इनके जैसा ठोस काम कोई नहीं करता है। इनके कार्यकर्ता बहुत निष्ठा वाले हैं, ऑनेस्ट है, खुशी से सेवा करते हैं, महिमा करके जाते हैं ना। कितने मेहमान वर्ष भर में आते। तो जितना ऊंचा हमारा विद्यालय है, जितना ऊंचा बाबा है, जितना ऊंचा सत्य ज्ञान है, मुझे भी उतना ही ऊंचा बनना है, ताकि मैं यज्ञ को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करूं। कोई देखे ना देखे, मेरा विवेक तो मुझे देख रहा है ना। मुझे ऐसा शक्तिशाली ज्ञानी और योगी बनना है। इसलिए पहली समर्पण मैता मेरी खुद की चाहिए। बाबा ने सारे राज बता दिए। चलो पहले नहीं जानते थे, सत्य ज्ञान नहीं था, विकारों में डुबके लगाते थे। अब तो मिल चुका ना सत्य ज्ञान, अब तो स्वयं सत्य बाबा मिल चुके हैं, तो मुझे ये ज्ञान योग में कैसे चलना है। खुद का लक्ष्य खुद बनाओ। बाबा ने कहा, दादियों ने कहा, दीदियों ने कहा, मैं क्या कह रही हूं, आपका कहना क्या है? जो बाबा कहते हैं वो ही मेरा कहना है। समर्पण माना, अब मेरी और कोई इच्छा नहीं। मुझे बाबा पसंद, बाबा का ज्ञान पसंद, बाबा का यज्ञ पसंद, बाबा का परिवार पसंद, बाबा की सेवा पसंद। मुझे दिल से स्वीकार करना है। अब और कोई इच्छा नहीं, दूसरा कोई विचार नहीं। जब इच्छा ही दूसरी नहीं, मेरा विचार ही दूसरा नहीं, तो मेरी वृत्ति और प्रवृत्ति भी वो ही जो बाबा चाहते। बाबा कहते हैं ना, तुमने अपना मन मुझे दे दिया तो और विचार कैसे तुम कर सकते। ये हमें खुद खुद पर ध्यान रखना है, दूसरा कोई थोड़ी रखेगा। इसलिए लक्ष्य ऊंचा, हल्का नहीं। जो बन सकेंगे बन जाएंगे, कोई तो प्रजा बनेगा, कोई तो चंद्रवंशी बनेगा, ऐसे हल्के विचार हम क्यों करते। भाई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, डॉक्टर बनने की पढ़ाई की कराई जा रही है, और मैं सोचूं कि कंपाउंडर बन जाऊंगी तो भी बहुत है, ऐसा चल सकता है? पढ़ाई कौन सी पढ़ाई जा रही, सारे प्रबंध किस लेवल के दिए जा रहे। इसलिए खुद को सदा टाइट रखो, अटेंशन रखो, मेरा लक्ष्य कमजोर नहीं बनना चाहिए, हल्का और नीचा लक्ष्य नहीं, संपन्न और संपूर्ण। और फिर मुझे निष्ठा से पुरुषार्थ करना, सिंसियरिटी चाहिए। सिंसियरली मुझे फॉलो करना है, हर बार करता हूं, देखता हूं, नई हूं, पुरानी हूं, युवा हूं, बूढ़ा हूं, नहीं, मुझे सिंसियरिटी से बाबा को फॉलो करना है। निष्ठा चाहिए, निष्ठा नहीं है पावरफुल पुरुषार्थ नहीं होगा। आलस नहीं, अलबेलापन नहीं, बहानेबाजी नहीं। भगवान से रोज पढ़े और थर्ड क्लास पढ़े। कौन सा क्लास लाना है? गर्व से कहते हैं ना, हम भगवान से रोज पढ़ते हैं, तो भगवान से पढ़ने वाला स्टूडेंट कैसा हो, है ना? तो हमेशा अपने मन बुद्धि को कन्विंस करते रहो, नहीं बाबा कहे वो ही करना है। और यही तो मम्मा की विशेषता थी। मम्मा पीछे आई और नंबर वन चली गई, इस एक धारणा मम्मा में थी, बाबा का कहना और मम्मा का करना। कोई अपना विचार नहीं। एग्जाम्पल कई आप जानते हैं, बाबा सबको मुरली क्लास के बाद पहाड़ियों में घुमाने ले जाते थे। बाबा पूछते थे कि बताओ बच्चे आज कौन सी पहाड़ी पर जाना है, तो बाकी सब कहते थे बाबा इधर, कोई कहेगा बाबा इधर, बाबा उस पहाड़ी पर, दादियां कहती हम बताते थे। मम्मा से बाबा पूछता था, मम्मा कहती थी बाबा जहां आप ले जाओ। अब ये तो सामान्य बात है ना भाई, चलो विचार दिया तो भी कोई वो बात नहीं है, पर ऐसी सामान्य बात में भी मम्मा कहती थी बाबा आप जहां ले जाओ। एक पार्टी का भी उदाहरण आप सबने सुना होगा कि पार्टी निकल रही थी और बाबा ने मम्मा को कहा हलवा बनाओ, बच्चों को खिलाना है। अब मम्मा तो गई किचन में बनाने लगी और दादियां आई, कहती मम्मा पार्टी तो निकल गई, आप क्यों बना रहे? बोला नहीं, बाबा ने कहा ना। मम्मा ने बना के दिया, बाबा ने रेलवे स्टेशन भेजा और सब बच्चों को हलवा खिला। अब हमारे सामने मुरली में सभी श्रीमत स्पष्ट है। हम कह नहीं सकते हैं कि मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं ये हमारा नियम है या श्रीमत है। क्यों पता नहीं है? मुरली ध्यान से हम अध्ययन करें तो हर बात पता चलती है ना। मन बुद्धि संस्कार बाबा के आगे समर्पित। मेरे संस्कार ऐसे हैं नहीं, अब मुझे मेरे संस्कार से नहीं चलना है, बाबा के दिए हुए संस्कार से चलना है। अपने आदि अनादि शुद्ध संस्कारों से मुझे चलना। फिर आता है कर्मेंद्रियों से समर्पित। अब मुझे हर कर्मेंद्रिय श्रीमत पर सेवा में लगा दे। अब इन आंखों से मुझे आत्मिक दृष्टि से देखना है। अब इन आंखों से हर आत्मा को उनके असली गुणों से देखना, उनके वर्तमान अवगुण नहीं देखने। अब इन कानों से भगवान के ज्ञान महिमा की बातें सुनी। तेरी मेरी इसकी उसकी निंदा नहीं कर रही, वो नहीं सुननी है। मुझे मुख से बाबा के ज्ञान रत्न दे दे। बाबा कहते हैं ना मुख से रत्न निकालो, माना व्यर्थ बातें न निकालो। जिस मुख से भगवान के ज्ञान का दान करते हैं उस मुख से भगवान के बच्चों की निंदा कैसे कर सकते? किसी के बच्चों की निंदा करके उनके माँ बाप को खुश कर सकते हैं? हाँ नहीं। सभी आत्माएं बाबा के बच्चे। हर कर्मेंद्रिय को कमल फूल बनाना, नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, हर कर्मेंद्रिय को कमल फूल समान बना। हर कर्मेंद्रिय को श्रीमत पर मुझे यूज कर। अब अपने को चेक करो, कितना हम कर्मेंद्रियों का गलत उपयोग करके अभी भी विकर्मों का हिसाब बना रहे, क्योंकि कर्मेंद्रिय से किया माना हिसाब बन गए। आंखें दिखाई, मुंह बिगाड़ा, किसी को देख के नाक चढ़ाया, अब इसको क्या कहेंगे बताओ? हाँ, ये विकर्म हुए कि नहीं हुए? क्योंकि कर्मेंद्रिय से किया माना कर्म हो गए। मैंने आंखों से भवें चढ़ा के इशारे गलत किए तो इसको क्या कहे? कर्मेंद्रिय की समर्पण मयता तो नहीं हुई ना? ये मुझे लक्ष्य बनाना है कि मुझे हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग करना है। और हर कर्मेंद्रिय में मुझे तपस्या का तेज भरना है। मुझे इंद्रियों के रसों में नहीं डूबना है। ये भी एक प्रकार की गृहस्थी है, देखने का रस, कौन आया, कौन गया, कहां गया, किससे मिला, कोई मतलब ही नहीं और आंख घूमेगी। देखने का रस, दुनिया भर की बातें सुनने जानने का रस, कोई कहेगा आपको ये पता है? अरे ना ना, बताओ बताओ क्या बात हुआ। जैसे वो बात सुने बिगर संपूर्ण बन नहीं सकेंगे, इतना इंटरेस्ट व्यर्थ सुनने में। ये सुनने का रस, खाने का रस, बाबा कहते ना खाऊं 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 होता रहता है, बस ये खाऊं वो खाऊं, संडे है ये बनाऊं वो बनाऊं, खाने का रस, बातें करने का रस, घर में कोई नहीं है, कोई काम नहीं है, फ्री बैठे हैं, बाबा की याद में रह सकते हैं, साइलेंस में रह सकते हैं, पर राह देखेंगे, कोई आवे तो बातें करे, कोई आवे तो बात करे, बात करने का ये इंद्रिय रस है। ये इंद्रिय रसों की गृहस्थी से निकले, हर कर्मेंद्रिय को कमल फूल बनाए और श्रीमत अनुसार मुझे उपयोग करना है। ये मुझे खुद खुद पर ध्यान देना, ये समर्पण में था। अब ये हड्डियां भगवान के काम आ जाए। बाबा कहते ना दधीची ऋषि मिसल, हड्डी जिगरी सेवा करो। गिनती नहीं करे, मैंने काम कर लिया, अब ये उसका काम है, मैं नहीं करूंगी। गिनती नहीं करो, हिसाब नहीं करना है, मुझे मेरी हड्डियां सफल करनी। मैंने भगवान से ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया है कि ये करेगी तो मैं करूंगी, ये नहीं करेंगी तो मैं नहीं करूंगी। नहीं, मैंने कोई किसी को देख के भगवान से एग्रीमेंट नहीं किया। मुझे दिल से ये मौका है संगम युग में। युवा है, हड्डियां लगाओ। बूढ़े होके थोड़ी इतनी सेवा होगी, अभी ही तो होगी। इसलिए कहते हैं ना, घर के काम में बादशाह भी गुलाम होता है। यज्ञ के हर सेवा कार्य के लिए हम बंधे हैं। हमें बाबा ने यज्ञ निवासी क्यों बनाए? इतना बड़ा यज्ञ प्रैक्टिकल संभालना है तो हमें हड्डियां लगानी पड़ेगी ना। खुशी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, तन से मन से लग जाना है। हर एक को अनुभव है 40-50 वर्ष के बाद फिर वो शक्ति इतनी नहीं रहती। जब कर सकते हैं तब दिल से सेवा करते हैं, तो जब नहीं कर सकते हैं तब अफसोस नहीं होता है। तब आपको अफसोस नहीं होगा कि जब कर सकते थे मैंने दिन रात बाबा की सेवा की, अब नहीं हो सकता है तो मनसा सेवा करते हैं, दूसरों में उमंग उत्साह भरते हैं, करो भाई तो अफसोस नहीं होगा। पर जब कर सकते हैं तब खा पी के मौज किया, तो जब नहीं कर सकते तब अफसोस होगा, तब दिल खाएगा। तीसरा स्टेप, अपनी गुण कला विशेषताओं को समर्पण करो। जो आप में अच्छा गुण है उस गुण से बाबा का कार्य कर। दूसरे को देख के अपना गुण बिगाड़ो नहीं। जो आप में विशेषता है, कला है, स्किल है, स्किल माना समझते हैं ना, कौशल, भाई आप माइक चलाना जानते हैं, इलेक्ट्रिक का काम जानते हैं, कोई टोली बनाना जानते हैं, कोई अच्छी सफाई करना जानते, जो कला है लगाओ। गुण कला विशेषता बाबा के कार्य में लगाओ और बाबा के ज्ञान से उसको और परफेक्ट बनाओ। शुरू में यज्ञ में थोड़ी कोई पैसे थे, सब कुछ खुद करते थे, बैनर भी खुद बनाते थे, कौन हम आर्टिस्ट थोड़ी थे, खुद ही बैनर बनाते थे। पर करते करते होशियार बन गए। पांडव भवन कितना छोटा है, छोटे छोटे डिपार्टमेंट, वही डिपार्टमेंट वाले करते करते आज इतने बड़े शांतिवन को संभाल रहे। भगवान को इतना देते हैं वो हमें परफेक्ट बना देता है। इसलिए अपनी कला विशेषता गुण को छिपाओ नहीं। कहीं छिपाते हैं, मैं सेवा में लगाऊंगा, बहन जी मुझे ही बार बार कहेगी करके अपनी कला छिपाते हैं, ना अपनी गुण कला विशेषता छिपाने हैं और ना हमें इसका अभिमान करना है, अभिमान भी नहीं करने। अभिमान आएगा, गुण अवगुण हो जाएगा। और चौथी बात, जो स्थूल धन साधन जमीन जायदाद स्थूल जो कुछ है मुझे श्रीमत पर यूज करना है और बाबा को भी, बाबा का भी हिस्सा निकालना है। जो आप कर सकते हैं, बाबा ने कभी नहीं किया कहा कि तुम सब कुछ दे दो और तुम भूखे रहो, ऐसा बाबा ने कभी नहीं कहा। खुद विवेक से निर्णय करो हम कितना धन साधन जमीन जायदाद जो कुछ स्थूल है वो कहां तक लगा सकते हैं, खुद निर्णय करो। जब खुद स्वाहा करते हैं ना तो ऑटोमेटिक दूसरों से करवा सकते, क्योंकि बाबा ने हमें निमित्त बनाया है कि सबके भाग्य बना दे। आप दूसरे को तभी कह सकेंगे जब खुद करेंगे। जो भी हमारे संबंध संपर्क में हैं उनके भी धन साधन को बाबा के कार्य में सफल कराना है। अगर हमारे बेटे बहू बेटियां परिवार वाले योगी नहीं बनते हैं, कम से कम सहयोगी बनाओ, सहयोगी बनाओ, भावना डालो। भगवान से कुछ जमा का खाता सबका बने तो कुछ ना कुछ वर्षा तो मिलेगा ना उन आत्माओं को भी। ये है समर्पण में। पर लक्ष्य होगा संपन्न संपूर्ण बनने का तो आप स्वाहा कर होंगे। ओम शांति। टाइम हो चुका है, हम समाप्त करते हैं। सबको पसंद है ऐसा लक्ष्य, ऐसी समर्पण मेहता पसंद है? बहुत अच्छे।
बहुत सुंदर सुंदर बातें सुनी समर्पण मेहता के नाम पर। अवश्य ही आपके लिए उपयोगी बातें हैं सारी। दीदी अपना अमूल्य समय निकाल कर आए आप सबके बीच में आने के लिए। एक हाथ हिलाकर दीदी का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।